मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पार्थ सारथी फाउंडेशन के भक्तों को और अन्य जो भी भक्त विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन कि आपने यहाँ पार्थ सारथी फाउंडेशन के 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। जब से ये कोरोना की महामारी शुरू हुई तब से आप इंटरनेट पर कथाओं का आयोजन करते आए हैं, जिससे कि भक्तों को कथा सुनने का अवसर मिले, तो बहुत ही एक प्रशंसनीय और लाभदायक कार्य है। तो पुनः आप सबको हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूँ कि इसी तरह के कार्य आप भविष्य में भी जारी रखेंगे, ताकि विभिन्न स्थानों से अनेक भक्तों को कृष्ण कथा का लाभ उपलब्ध हो पाएगा। तो मैंने सोचा आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करूं जिसके ऊपर शायद हम लोग इतनी चर्चा नहीं करते हों, यद्यपि ये एक महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है, एक बहुत छोटा अंग है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अभी यद्यपि कोरोना की महामारी इतनी फैली हुई नहीं है जितने की पहले थी, और अब सारे मंदिर भी मेरे ख्याल से खुल गए हैं, आशा करता हूँ कि अमेरिका में भी सारे मंदिर खुल गए होंगे और आप सब मंदिरों में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ मंदिर में जाके अवश्य आप दर्शन कर रहे होंगे, कथाएं सुन रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, भक्तों के साथ में प्रसाद पा रहे होंगे, और ये सब करते करते और एक महत्वपूर्ण भक्ति के अंग का पालन आप अवश्य कर रहे होंगे, और वो है चरणामृत का पान। अभी ये तो बहुत छोटा कार्य है, जैसे कथा में बैठते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, कभी कीर्तन करते हैं तो 1.5-2 घंटा निकल जाता है, दर्शन करते हैं कितना समय दर्शन के लिए बिताते हैं, बहुत सबसे महत्वपूर्ण ये सारे कार्य हैं अपने आप में, परंतु चरणामृत लेना ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के अनुसार साधन भक्ति के 64 अंगों का उल्लेख और संक्षिप्त वर्णन अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में किया है। तो इन 64 नियमों में से अंगों में से अनेक ऐसे हैं जो कि अर्चा विग्रह की सेवा से संबंधित हैं। ऐसे अनेक नियम 64 अंगों में से हैं। उनमें से एक है 38वां अंग, जो है पाद्यास्वादः। पाद्य आस्वादः, पाद्य अर्थात चरण, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमलों को धोकर जो जल आता है और उसका आस्वादन किया जाता है, अर्थात चरणामृत का पान करना, ये भक्ति के 64 अंगों में से 38वां अंग है। तो आज प्रारंभ में मैं श्रील भक्ति रसामृत सिंधु श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ से मैं पढ़ना चाहूंगा ये एक परिच्छेद, जो कि पाद्यास्वाद है, तो चरणामृत पान के संबंध में है। तो ये एक परिच्छेद मैं इस ग्रंथ से पढ़ूंगा। चरणामृत पान। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है, उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है, तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं, वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाए हुए श्लोकों के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि चरणामृत का पान करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे करना हमें भूलना नहीं चाहिए। जब हम जाते हैं मंदिर तो दर्शन अवश्य करते हैं, दर्शन लिए बिना तो आते ही नहीं हैं और करना भी चाहिए, दर्शन किए बिना तो आना ही नहीं चाहिए मंदिर से। तो उसी प्रकार से भक्तों का संग करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सारे आवश्यक अंग हैं भक्ति के, जो कि सबसे अच्छे ढंग से मंदिर में किए जा सकते हैं, घर में भी किए जाते हैं। परंतु मंदिर में विशेष लाभ ये होता है कि भक्तों का संग बड़ी मात्रा में मिल जाता है, जो कि कभी कभी घर में संभव नहीं होता है। तो जब मंदिर में जाते हैं तो अभी 3 बूंद चरणामृत का पान हमें करना चाहिए और बड़े आदर से हमारे हथेली में लेके पान करने की भी एक पद्धति होती है, इस तरह से हाथ को पकड़ के और फिर ऐसे उसका पान करते हैं 3 बूंद का। और जो परोसने वाले होते हैं उनको देखना है कि वो हाथ का स्पर्श न, जो चम्मच है वो हाथ से स्पर्श न करें, ऊपर से 3 बूंद डाल दें और बड़े सम्मान से आदर से भक्त उसे लेकर ऐसे ग्रहण कर ले और जो भी बचा है फिर ऐसे सर में पोंछ ले। ऐसे बताया जाता है कि चरणामृत इतना पावन है, इतना शुद्ध है कि इसको पीने के बाद वैसे कोई मुंह धोने की आवश्यकता नहीं है, आचमन करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अन्य कोई भी भोजन लेते हैं, चाहे हम कृष्ण प्रसाद भी क्यों न लें, वैसे ये बताया जाता है कि हमें मुंह धोना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। ऐसे बिना हाथ मुंह धोए हुए हम अपवित्र माने जाते हैं। हम कोई पवित्र स्थान में नहीं जा सकते, न कोई पवित्र कार्य कर सकते हैं। परंतु जब आचमन लेते हैं तो फिर वैसे मुंह धोने की, हाथ धोने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चरणामृत ये साधारण जल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों बार पद्म पुराण का एक श्लोक बतलाया था। लंबा श्लोक है इसलिए इस पूरा श्लोक नहीं बतलाऊंगा, केवल इस श्लोक का अर्थ बताऊंगा। ये एक पद्म पुराण का श्लोक है जिसमें ये बताया जाता है कि ऐसे अनेक प्रकार के लोग हैं जिनकी नारकी बुद्धि है। नारकी बुद्धि अर्थात वो नरकवासी के समान है। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं? ऐसे लोग सोचते हैं कि जो भगवान का श्री विग्रह है वो केवल एक पत्थर या लकड़ी का बना कोई बना हुआ प्रतिमा है। दूसरी बात, वो ऐसे सोचते हैं कि जो सद्गुरु होते हैं वो एक साधारण मनुष्य होते हैं। तीसरी बात, वो ऐसा सोचते हैं जब किसी वैष्णव को देखते हैं कि ये अमुक जाति का है, ऊंचे जाति का है, निम्न श्रेणी के जाति का है इत्यादि। चौथी बात, जो भगवान कृष्ण से संबंधित मंत्र हैं और इन मंत्रों के अंतर्गत उनके पवित्र नामों का उच्चारण भी आता है, तो ये सोचना कि ये सारे दिव्य मंत्र भी साधारण शब्दों के समान, ये साधारण ध्वनि के समान ही है। और फिर कोई यदि ऐसे सोचता है कि भगवान विष्णु या कृष्ण देवी देवताओं के समान है, और यदि कोई सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का जो चरणामृत है वो साधारण जल है, तो ऐसे जो लोग मानते हैं, जिनकी बुद्धि या जिनका मत इस प्रकार से है, वो नरक में निवास करने वाले लोगों के समान है। इसे नारकी बुद्धि कही जाती है। तो विशेष रूप से हम, क्योंकि आज चरणामृत की बात कर रहे हैं, तो केवल चरणामृत से जो संबंधित इस श्लोक का अंग है उतना ही आपके सामने रखेंगे। विष्णुर्वा वैष्णवानां कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि ही। पाद तीर्थे, तो भगवान किन के पाद अर्थात चरण कमल, तीर्थ, तीर्थ अर्थात जो जल है, कभी कभी चरणामृत को तीर्थ भी कहते हैं। तो चरण कमलों के जो तीर्थ है, जो जल है, उसे अम्बुद्धि ही, बुद्धि ही, इसे साधारण अम्बु या जल नहीं मानना चाहिए। तो किस प्रकार के चरण कमलों से, किन के चरण कमलों से उत्पन्न होने वाले जल की बात हो रही है? विष्णु वा वैष्णवानाम, न केवल विष्णु परंतु वैष्णवानाम, शुद्ध वैष्णवों के चरण कमलों को धोए हुआ धुला हुआ जो जल है वो भी इतना ही पावन है। तो कितना पावन है? कलिमल मथने, कलिमल मथन अर्थात ये जल का पान करने से या इसको ग्रहण करने से अपने अंग के ऊपर, तो कली का जितना भी मल है, कली के जो दुर्गुण हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कली के मल को नष्ट करने वाले तीर्थ को, पाद तीर्थ को साधारण अम्बु या जल मानना, ये बहुत ही गलत बात है। जो व्यक्ति ऐसे सोचता है उसकी नारकी बुद्धि है। तो ऐसे पद्म पुराण में बताया गया है। तो इसलिए हमें मानना चाहिए कि ये चरणामृत है, चरणों का अमृत। अमृत शब्द का तात्पर्य क्या है? अमृत वो है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जो बहुत मीठा होता है। जब हम कोई भोजन परोस रहे होते हैं, सेवन कर रहे होते हैं, विशेष करके भगवान का प्रसाद, हम कहते हैं अरे ये तो अमृत जैसे स्वादिष्ट है। तो ये एक अर्थ है, साधारण भाषा में हम ऐसे कहते हैं। परंतु अमृत शब्द का मूल अर्थ है अमृत, जो हमें मृतत्व की परिस्थिति से मुक्त करा दे, हमें परे करा दे। अमृत हमें अमृतत्व, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करा दे। तो ये है अमृत। तो साधारण जल हमें अमृतत्व की अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, परंतु भगवान के चरण कमलों को धोया हुआ जो जल है, वो हमें अमृतत्व की अवस्था तक पहुंचा सकता है। और ये केवल जल नहीं है, इसमें तरह तरह के अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं भी मिलाई जाती हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, दही मिलाया जाता है, तरह 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 के अन्य और भी बहुत सुगंधित ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनको मिलाए जाते हैं। आप में जो पुजारी सेवा करते हैं अवश्य आप जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जल बहुत ही स्वादिष्ट भी हो जाता है। तो अमृत शब्द के दोनों अर्थ ये चरणामृत में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें इनको इनका सेवन करना चाहिए। अभी हमें जानना है कि चरणामृत भी गंगा यमुना आदि से अभिन्न है, बल्कि पद्म पुराण में बताया जाता है कि जो नर्मदा नर्मदा के जल में जब स्नान किया जाता है तो बहुत लाभ मिलता है, परंतु वही लाभ हमें मिलता है यमुना जो है गंगा में स्नान में को देख के, स्पर्श करके, और यमुना का केवल दर्शन करके वही लाभ मिलता है। परंतु चरणामृत का स्मरण मात्र कोई करे तो उतना लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार से कई श्लोक हैं। तो गंगा यमुना आदि ये भी चरणामृत है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा गंगा माता प्रविष्ट कैसे हुई भौतिक जगत में, इस भौतिक ब्रह्मांड में? भगवान वामन देव ने जब अपना विराट रूप प्रदर्शित किया और उनके चरण कमलों में ब्रह्मांड के आवरण में भेद कर दिया, तो विरजा का जल जो है फिर ये चले आया अंदर। और विरजा के जल के साथ आध्यात्मिक जगत से, गोलोक वृंदावन से गंगा यमुना भी बह के आ गई, और फिर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए, उनको उनका अभिषेक करते हुए वो भौतिक ब्रह्मांड के भीतर आ गई। और अंततः जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वो पृथ्वी लोक तक पहुंच गई। तो जो धर्मज्ञ हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं, वो भली भांति जानते हैं कि गंगा का जल भी साधारण जल नहीं है, ये भी चरणामृत है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, जेदी न गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाए, चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। वो कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु इस भजन में, कि जब वो अपने घर में लौट के आते हैं और देखते हैं कि घर में भगवान कृष्ण का भजन हो रहा है, तो वो केवल अपने घर को नहीं देखते हैं, वो साक्षात इसे गोलोक वृंदावन मानते हैं। तो गोलोक वृंदावन का दर्शन उनको होता है जबकि वो अपने घर में लौट के आते हैं और घर में परिवार के सदस्यों को भजन कीर्तन आदि करते हुए देखते हैं। और आगे कहते हैं चरण सीधू, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के चरण कमलों को धोकर जो जल आता है, जो चरणामृत है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? देखिया गंगा, जब मैं अर्चा विग्रह के चरणामृत को देखता हूं तो मैं साक्षात गंगा इसे मानता हूं, और इस भाव से मैं इस जल का सेवन करता हूं। और सुख न सीमा पाए, इस तरह से मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि भक्त बड़े भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं और दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से चरणामृत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो यहाँ याद रखिए, जो हमने श्लोक बताया, विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि ही, यहाँ केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों की बात नहीं हो रही है, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की बात भी हो रही है। तो इस बारे में चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक है इसके बारे में, कि भक्तों के, शुद्ध भक्तों के लिए बारे में बताया गया, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट ए तीन महाबल। इसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तीन ऐसे चीज हैं जो बहुत ही बलवान होते हैं। वो क्या है? भक्त पद धूलि, भक्तों के चरण कमलों की धूलि, चरण रज। दूसरी बात, भक्त पद जल, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों को धोया हुआ जल। और भक्त भुक्त अवशिष्ट, भक्तों ने जो प्रसाद का सेवन किया हुआ है तो उसका जो अवशिष्ट रह जाता है उसको महा महा प्रसाद के रूप में सेवन किया जा सकता है। तो ये तीन महाबल है, महाबलवान है ये तीन। तो ऐसे ही एक भक्त हुआ करते थे जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, और वो भक्त का नाम था कालिदास। वैसे नाम तो कालिदास था लेकिन वो कृष्णदास थे। अपनी श्रद्धा में, अपने कार्यों में, और उनकी विशेषता ये थी कि वो इन तीन चीजों में बहुत अधिक विश्वास करते थे। इतनी श्रद्धा होती थी कि वो जगह जगह जाके भक्तों का अवशिष्ट आदि सेवन किया करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। इसलिए वो जानते थे कि कालिदास की भावना क्या है, कालिदास का के हृदय में क्या भावना है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में मंदिर में जाया करते थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर मंदिर के बाहर, सिंह द्वार के बाहर एक स्थान है जहाँ लोग अपने पैरों को धोते हैं, क्योंकि जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो गंदे पाँव से नहीं जाना चाहिए, पैर धोने चाहिए। तो जूते चप्पल की बात तो दूर रही, परंतु नंगे पैर भी जाएंगे तो चरणों को धोना चाहिए। तब ठंडे देशों में वगैरह ऐसा मुश्किल है करना, परंतु कम से कम स्वच्छ होने चाहिए पैर हमारे। तो जगन्नाथपुरी में ठंडी तो नहीं होती है, तो वहाँ बाहर सब लोग, सारे भक्त जो हैं, अपने पैर धोकर अंदर जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे किया करते थे। तो जिस स्थान में वो ऐसे किया करते थे, उनके सेवक गोविंद कमंडलु में थोड़ा जल लाते थे और फिर महाप्रभु के चरण कमलों में जल अर्पण करते थे। और महाप्रभु ने ये एक आदेश दिया हुआ था गोविंद को कि देखो, ऐसे न हो कि कोई भक्त आके इस जल का पान करे। सख्त आदेश था। परंतु उस समय कालिदास पास में आए थे एक दिन, तो कालिदास ने मौका देखा और सीधे महाप्रभु के वहां चरण कमल धोते हुए सीधे वहां पर आए, एक बार अपने मुट्ठी को सामने करके उस जल का पान किया। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा और गोविंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु का इतना सख्त आदेश है, सबको मना किया है, परंतु कालिदास बड़े आराम से सामने से, भगवान के सामने से जाके उनके चरण कमलों का जल, चरणामृत का पान कर रहे हैं। और एक बार नहीं, दूसरी बार किया। तब भी महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार किया, फिर भी महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। लेकिन चौथी बार जब करने जा रहे थे, तब महाप्रभु ने इशारे किए और कहा, बस बस, अब बहुत हो गया, और नहीं करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत ही एक विशेष जो सौभाग्य है, ये कालिदास को दिया, क्योंकि उनको पता था कि वैष्णवों में कितनी श्रद्धा है, वैष्णवों का कितना सम्मान करते हैं ये कालिदास। और भगवान और भगवान के भक्त दोनों हमें प्रिय होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये विष्णुर वा वैष्णवानाम पाद तीर्थ है, ये हमें याद रखना चाहिए। और एक ऐसी कथा हुई, जब गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया करते थे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन आदि ये आते हैं, और जगन्नाथ मंदिर से रथ में सवार होकर जब पहुंच जाते हैं गुंडीचा मंदिर, वहां पर लगभग 8 या 9 दिन रहते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं। तो जब 8-9 दिन रहते हैं वहां पर, तो निश्चित ही स्थान को साफ करना बहुत आवश्यक है। तो महाप्रभु ऐसे किया करते थे। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाप्रभु जब बिल्कुल मग्न थे मंदिर के मार्जन करने में, उनके भक्त उनको आकर जल के पात्र देते थे और वो जल छिड़क के यहाँ वहाँ मंदिर को साफ कर रहे थे। उस समय कई भक्तों ने उनके हाथ, उनके चरण, हस्त चरण और उनके चरण कमल धोने के लिए भी जल लगा दिया, और वो पानी बहता हुआ बाहर निकल पड़ा, और बाहर वहाँ सारे भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे उस जल का, चरणामृत का। तो वहाँ उन्होंने पान किया। तो ये एक वर्णन है कि कैसे भक्तों ने चरणामृत का पान किया श्री चैतन्य महाप्रभु का। दूसरी बार इसी गुंडीचा मार्जन लीला में हुआ ये कि बंगाल के एक भक्त आए थे, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के सामने उनके चरण कमलों का जल पान करने लगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, अंदर से वो संतुष्ट हुए वास्तव में, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, परंतु बाहर से उन्होंने क्रोध दिखलाया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को डांटा, अरे देखो स्वरूप, तुम्हारा ये बंगाली वैष्णव क्या कर रहा है, अब मेरी गति क्या होगी मुझे पता नहीं, इसने मेरे जो है मेरे पैरों को धोया हुआ जल इसको पी रहा है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने फिर उसे धक्का मार के निकाल दिया, क्षमा कीजिए प्रभु, इस भक्त ने गलती कर दी, परंतु तो अंदर से महाप्रभु संतुष्ट हुए थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चरणामृत का पान भक्तों की लीला में, भगवान की लीला में बहुत महत्व रखता है। वैसे शास्त्रों में और विशेष रूप से हरि भक्ति विलास में चरणामृत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हरि भक्ति विलास में पद्म पुराण के लगभग न जाने कितने 50-60 या इससे भी अधिक कोई ऐसे श्लोक होंगे चरणामृत के बारे में। तो वो उन सारे श्लोकों को तो मैं सुना नहीं सकता आपको, लेकिन ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो जो 2-3 प्रसिद्ध श्लोक हैं उनको ही आपके सामने मैं कहूँगा। सबसे प्रसिद्ध श्लोक वो ये है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोर पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। अकाल मृत्यु हरणम, जो अकाल मृत्यु को हर ले, सर्वव्याधि विनाशनम, जो सर्व व्याधियों को, बीमारियों को विनाश कर ले, विनष्ट कर ले, वो कौन सा है, वो क्या है जो ये सब कर सकता है, विष्णोर पादोदकम, भगवान विष्णु के पाद, पाद अर्थात चरण कमल, उदकम अर्थात जल, तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के चरण कमलों को जो धुला हुआ धोया हुआ जल है उसका पीतवा, उसको पीकर शिरसा धारयाम्यहम्, मैं उसे पीकर मेरे सर के ऊपर धारण करता हूँ, शिरसा अर्थात धर सर के ऊपर। तो इस मंत्र का जप हमें उच्चारण हमें करना चाहिए जबकि हम चरणामृत का पान करते हैं मंदिर में। और एक महत्वपूर्ण मंत्र है राधा कृष्ण के संबंध में, परंतु 2 मिनट बाद वो मंत्र को आपको सुनाऊंगा। परंतु इस मंत्र के संबंध में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा श्रील प्रभुपाद जी के लीला में से। प्रभुपाद जी स्वयं चरणामृत को न केवल आध्यात्मिक औषधि मानते थे परंतु उसे भौतिक औषधि के रूप में भी मानते थे। जब प्रभुपाद जी बीमार पड़ते थे कभी कभी, तो वो केवल चरणामृत पर ही निर्भर रहते थे। वो कहते थे मेरे लिए यही सबसे श्रेष्ठ औषध है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्तों को मना नहीं किया औषध लेने के लिए या किसी कविराज या वैद्य के पास जाने के लिए, परंतु वो चरणामृत के ऊपर बहुत जोर देते थे, तो स्वयं भी लिया करते थे और अपने भक्तों को भी कहा करते थे। एक बार उन्होंने ये बतला ये कहानी बताई कि उनकी जो छोटी बहन थी भवतारिणी देवीदासी, जिनको भक्त लोग बड़े प्रेम से पिशी माँ कह के पुकारते थे, जो पिता की बहन होती है छोटी उनको बंगला में पिशी माँ कहते हैं, पिशी माँ। तो पिशी माँ के एक पुत्र थे जिनका नाम था मदन। एक बार मदन को कॉलेरा हुआ था तो पिशी माँ के मन में इतनी श्रद्धा थी चरणामृत के बारे में कि जब डॉक्टरों की दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी तो उन्होंने सोचा कि चरणामृत से केवल मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, केवल चरणामृत पिलाकर उसकी बीमारी ठीक हो गई, ठीक करवा दी पिशी माँ ने। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था पालिका देवीदासी, शिष्या थी वो, तो बहुत बीमार पड़ गई एक बार। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसे चरणामृत पिलाओ, और 2 भक्तों को बिठाया उनके साथ में और कहा कि तुम दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो और कीर्तन करो। तो हरिनाम और चरणामृत ये हमारे 2 सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक औषध हैं, ये हमें याद रखना है। तो चाहे कोई भक्त को कोई भौतिक बीमारी हो या कोई मानसिक बीमारी हो, तब अवश्य आप उनसे कहिए कि आप चरणामृत का पान कीजिए। वैसे भी हमें प्रतिदिन चरणामृत का पान करना चाहिए, और विशेष रूप से जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई मानसिक रोग भी हो जाता है, तो उस समय भी हमें ऐसे चरणामृत का पान करना चाहिए। तो ऐसे भक्तों को आप भी बताइए। स्वयं मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि एक भक्त हैं, माताजी हैं, ये बहुत अभी 25 साल हो गए लगभग, उस समय विवाह के थोड़े वर्ष बीते थे, तो ये माताजी और प्रभु जी थे, उनके कोई संतान नहीं हुआ था। तो जब मेरे से बात करने आए थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने सारी जांच कर ली, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, बच्चों का जन्म नहीं होगा, अभी आप भूल जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया है, ऊपर कर दिया है, तो आप अभी चरणामृत केवल ले लो, लेकिन पूरी श्रद्धा से ले लो। तो कई महीने बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी कि अब मैं गर्भवती हूँ। और ये केवल मैंने कैसे ये हो गया चमत्कार का कि मैं प्रतिदिन चरणामृत ले रही थी बिना भूले, और बहुत अधिक श्रद्धा से मैं ले रही थी, और आज उनके 2 या 3 बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे भक्त भी बन गए हैं। तो वैसे श्रीमद् भागवत में भी ऐसे बताया जाता है कि उद्धव जी कहते हैं कि यदि हमें बुरे सपनों से, माया के प्रभाव से और दुख आदि से मुक्त होना है तो भगवान का महाप्रसाद स्वीकार करना चाहिए। न केवल जो भोजन नैवेद्य में रखा जाता है, परंतु भगवान के फूलों की माला, निर्माल्य, ये सब भी स्वीकार करने से हमारे बीमारियां वगैरह सब दूर हो जाएंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास मत जाइए, नहीं तो कल किसी की बीमारी हो गई वो कहेंगे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमने भक्ति रसामृत स्वामी से प्रवचन में सुना था कि आप चरणामृत ले लीजिए, तो ऐसा कहीं ना हो जाए। वैद्य के पास अवश्य आप जाएं, जाना है तो, परंतु साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जो उपाय हैं उनको नहीं भूलिए। जैसे कि हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण उपाय, दूसरी बात चरणामृत, तीसरी बात अभी भगवान का निर्माल्य, उनके फूलों की माला और उनको अर्पण किए हुए जो फूल हैं वो, तीसरी बात गोसेवा, भगवान के प्रिय गायों के गौशाला में जाके गायों की सेवा करना, गोबर साफ करना, गायों को घास खिलाना, उनको उनके पीठ को खुजाना इत्यादि, फिर तुलसी की सेवा करना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना, आरती करना, जल अर्पण करना, तो ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि हैं। तो यदि हमें कोई भौतिक रोग भी हुआ हो, आध्यात्मिक रोग भी हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें हमें अवश्य करनी चाहिए। वैसे कि जैसे मैंने पहले कहा, पद्म पुराण में बहुत ऐसे कुछ बताया गया है कि कैसे हम बुरे चीज़ों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। उनमें से थोड़ी बातें आपको इस संबंध में बता दूं कि चरणामृत का पान करने से न केवल हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु जहरीले सांप और खतरनाक जानवरों के प्रहार से भी मुक्त हो सकते हैं, मतलब उस भय से मुक्त हो सकते हैं, चोरी के भय से मुक्त हो सकते हैं, जो बुरे ग्रह हैं हमारे, शनि और ये राहु और केतु और मंगल और ये कितने सारे जो ग्रहों का प्रभाव हमारे पड़ता है हमारे ऊपर, तो इनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं चरणामृत का पान करके। बुरे सपनों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, तरह तरह के संकटों से, रुकावटों से, विघ्नों को पार कर सकते हैं हम चरणामृत का पान करके। ये चरणामृत जो है ये पूरी तरह से शुद्ध है, पावन है, शुभ है, मंगलमय है, सारे तीर्थ स्थानों के जाने के बराबर चरणामृत का पान करने का फल है। यहां तक कि ऐसे बताया गया है कि जो पापी से पापी व्यक्ति भी अगर एक बार भी चरणामृत का बूंद का सेवन कर ले तो वो पापों से मुक्त हो जाएगा। और मृत्यु के समय खास करके हमें याद रखना चाहिए कि यदि किसी भक्त का देहांत हो रहा है या हमारे कोई रिश्तेदार हो, संबंधी हो, कोई मित्र हो, उनका देहांत हो रहा है, तो चरणामृत और तुलसी का जो दल है वो अवश्य उस व्यक्ति के मुख में हम रखें और डालें, और उस व्यक्ति के शरीर का स्पर्श भी चरणामृत से हो तो कोटि कोटि पापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो खैर, ये है ये श्लोक, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोर पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। इससे अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए और एक श्लोक है जिसको चरणामृत का पान करते समय हमें उच्चारण करना चाहिए, और वो है श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावेन वै पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। राधा कृष्ण पादोदकम, पादोदकम अर्थात चरणामृत, जिसमें कि प्रेम भक्ति दम मुदा, प्रेम प्रेमा भक्ति प्रदान करने की शक्ति है, ऐसे राधा कृष्ण के चरण कमलों का जो अभिषेक का जल है, तो वही पीतवा जब हम भक्ति भाव से इसका पान करते हैं तो हमें प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे चरणामृत को मैं पान करने के बाद मैं अपने सर पे भी धारण करता हूँ। तो क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हम ये भली भांति जानते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत में रह के सुखी जीवन बिताना नहीं है, केवल स्वस्थ होना, निरोग होना, इतना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसलिए चरणामृत का पान करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमें राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के लिए, के चरणामृत के लिए, गुरु के चरणामृत के लिए ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आज हमारे पास इतना समय नहीं है। तो अंत में केवल मैं एक कहानी, एक कथा बताना चाहता हूँ पद्म पुराण से। शौनक मुनि जो हैं वो सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि चरणामृत का पान करने से हमने सुना है कि बहुत लाभ प्राप्त होता है, तो क्या ऐसे कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन आप कर सकते हैं जिसमें ये साबित होता है कि कृष्ण चरणामृत का पान करने से बहुत अधिक लाभ होता है? तो फिर सूत गोस्वामी ने एक कथा बताई कि त्रेता युग की कथा है कि एक बहुत ही पापी ब्राह्मण था, तथा कथित ब्राह्मण, द्विज ब्रह्म नहीं, वो जो नकली ब्राह्मण था, तो उसका नाम था सुदर्शन। तो ये सुदर्शन इतना पापी था कि प्रतिदिन वो वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन करता था और खंडन करता था और निंदा करता था, और कभी भी उपवास नहीं रखता था, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, जन्माष्टमी का व्रत हो। और इतना ही नहीं, जो भक्त इस तरह से इन व्रतों का पालन करते थे उनकी भी खूब निंदा करता था, और वो केवल ये सोचता था कि कैसे पेट भरा जाए। कभी भी जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया उसने, केवल ऐसे निंदा करना उसका काम होता था। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो यमराज के पास वो चला गया। तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि भाई बताओ इसके बारे में कि क्या दंड दिया जाए या उसको पुरस्कार दिया जाए, इसका इतिहास कुछ बताओ। तो चित्रगुप्त ने कहा कि वास्तव में हे प्रभु, इसने इतने सारे पाप किए हैं कि इनका इनकी गणना करना बहुत कठिन है। तो उन्होंने सारे पापों का वर्णन करना शुरू कर दिया, और यमराज भी थक गए, बस 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 और कितना सुनूंगा मैं, तो क्या दंड देना चाहिए, इसकी गति कैसे होनी चाहिए। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसे नरक लोक में कोटि कोटि सालों तक, जन्मों तक बल्कि बल्कि रहना चाहिए, और उसके बाद जब वो पृथ्वी लोक पर आएगा तो उसे कीड़ा बन के आना चाहिए। तो इस प्रकार से यमदूत उस सुदर्शन के आत्मा को ले गए नरक में। 100 मन्वंतर तक वो नरक में रहा, और फिर एक सूअर के शरीर में आया, उसके बाद एक कौवे के शरीर में आया, और उसका औभाग्य हुआ कि एक बार एक एक शुद्ध ब्राह्मण के घर के बाहर वो आया उड़कर। उस ब्राह्मण के द्वार के बाहर एक पात्र रखा था जिसमें कि चरणामृत था, और ये कौवे को क्या पता कि साधारण जल क्या है, चरणामृत क्या है। तो उसने अपनी चोंच वहां पे लगा दी और थोड़े चरणामृत का पान कर लिया, और जैसे ही वो पान कर लिया तो तुरंत क्या हो गया, उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी आत्मा को ले जाने के लिए बहुत ही ऐश्वर्यशाली और सुंदर रथों में ऐसे विष्णु दूत आए, और वो सारे उसे बड़े धूमधाम से उसे ले गए वैकुंठ लोक की ओर। तो फिर सूत गोस्वामी ने शौनक मुनि से कहा कि देखो, चरणामृत पीने का लाभ क्या है, जो इतना पापी व्यक्ति था और इतने इतने नरक आदि में जाके आया, पर एक बार उसने लेकिन चरणामृत का पान किया तो देखो कितने सारे पापों से मुक्त हो गया और सीधे वैकुंठ लोक चला गया। और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण भी करता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, अंग्रेजी में इसको एग्जैजरेशन कहते हैं, अतिशयोक्ति को। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये प्रभुपाद जी के अनुसार जैसे इस तरह की कथाएं होती हैं ये भले दुर्लभ हों परंतु ये झूठी कहानियां नहीं है, दंत कथाएं नहीं है, ये वास्तविक सत्य घटनाएं हैं। परंतु हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा न हो, हमने चरणामृत का पान किया, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई विष्णु दूत आ रहे हमें ले जाने के लिए, परंतु ऐसी घटनाएं होती हैं। और ऐसे भगवान की कृपा से शास्त्रों में इनका वर्णन इसलिए होता है कि हमारे अंदर श्रद्धा बढ़े भगवान के विभिन्न अंगों के प्रति और चरणामृत के प्रति भी। तो इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण के चरणामृत का पान प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए। अब जब चरणामृत पान करना संभव न हो, और संभव हो भी और हम कर भी लेते हैं, तो चरणामृत का सेवन करने के साथ साथ एक बहुत और कई दो तीन प्रकार के अमृत हैं जिनका पान भी हमें करना अवश्य चाहिए। जैसे नामामृत है और कथामृत है, इन दोनों का सेवन, इन दोनों प्रकार के अमृतों का सेवन करना नहीं भूलना चाहिए। तो चाहे नामामृत हो, कथामृत हो और चरणामृत हो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि नाना प्रकार के अमृतों का सेवन करने का अवसर ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़कर हमें प्राप्त हो गया है। तो ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है हम सबके ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए श्री श्री राधा श्याम सुंदर और उनके पावन चरणामृत का स्मरण करते हुए आज की इस कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबको शुभकामनाएं देके और आशा करके कि आपका पार्थ सारथी फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता रहे और कथामृत और नामामृत दोनों कम से कम आप इस इंटरनेट के माध्यम से भक्तों तक पहुंचा दें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
हरे दंडवत प्रणाम महाराज, बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई, चरणामृत की महिमा बताई और साथ साथ नामामृत और कथामृत। तो ये तीनों जो अमृत हम पाएंगे और हमारी ऐसे ही कोशिश रहेंगी कि नामामृत और कथामृत के बारे में हम पारसार्थी फाउंडेशन में यत्न करते रहेंगे जैसे कि श्रोताओं को लाभ मिले। सो महाराज जी, आपके पास थोड़ा टाइम है तो प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं।
हाँ, एक 5-10 मिनट तक कर सकते हैं।
सो आई विल रिक्वेस्ट प्रेम प्रिय पद्र माता जी, प्लीज टेक द क्वेश्चंस।
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने, आपका एसोसिएशन, वाणी एसोसिएशन हम भक्तों को मिला, आपके दर्शन हुए और इतना सुंदर कथा आपने समझाया और चरणामृत का इतना सुंदर क्लास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सो प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आज का जो प्रश्न उत्तर का सेशन है मधु माता जी लेंगी। सो मधु माता जी, गुड टू यू। हरे बोल, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कर लेना। महाराज जी, मेरी कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी बोल सकूं आपके सामने। पर प्रेम प्रिया पद्म माता जी हैं जिन्होंने जो पार्थ सारथी फाउंडेशन की जिन्होंने उसको स्टैब्लिश किया है, श्रीमान हरि मीरा प्रभु जी के शेल्टर में रहकर के उनकी कृपा है जो मैं अपनी वाणी की शुद्धिकरण का मुझे अवसर मिला है। महाराज जी आपकी क्लासेस सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाई गए हैं और मेरी जैसी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए नित्य मार्गदर्शन का सोर्स है महाराज जी आपकी क्लासेस। और आपकी ग्लोरीज मैं इतने कम समय में नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि उसी में पूरी एक क्लास हो जाएगी। बस मुझे एक चीज जो जिसमें बहुत ज्यादा गहराई से छुआ है महाराज जी, वो यह है कि आप जो हम सब ये अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए हम पतित जीव है ना, उनके प्रति जो आपकी करुणामय चिंता है सुप्रीमली हार्ट वार्मिंग, इतना अच्छा लगता है ना ये सोचकर कि आप हैं ना और आप ध्यान रखेंगे हम सब लोगों का। और मेरी बस करबद्ध विनती है कि आप पार्थ सारथी फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आते रहे आपकी पावन वाणी से हम सबको शुद्ध करने के लिए। मुझे सिर्फ एक श्लोक आपको डेडिकेट करना है महाराज जी। धर्म ज्ञो धर्म कर्ता च सदा धर्म परायण तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थ आदेश गुरु उच्यते। आपको तो मैं थोड़ी कुछ बताऊंगी इसका मतलब महाराज जी, अपन अब क्वेश्चन आंसर देते हैं। थैंक यू सो मच नारद जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट नारद जी। सो सबसे पहले क्वेश्चन प्रद्युम्न प्रभु जी का, प्रद्युम्न प्रभु जी आपके जब कन्वर्ट कर सकते।
हरे कृष्णा दलवत प्रणाम महाराज।
हरे कृष्णा प्रद्युम्न प्रभु, कैसे हैं आप? ठीक है ना? बहुत दिनों के बाद।
महाराज एक छोटा सा, हाँ जरूर महाराज, एक
हाँ
छोटा सा क्वेश्चन है
हाँ
कि हम हर रोज राधा दामोदर जी को स्नान करा के वो स्नान का जो चरणामृत है वो हम आधा हम हमारे यूज के लिए रखता है और दूसरा आप पोर्शन तुलसी माता जी को ऑफर करते हैं और अलग अलग प्लांट्स को ऑफर करते हैं फ्लावर के लिए, तो क्या ये ठीक है महाराज जी?
हाँ ठीक है, ठीक है,
अच्छा
ठीक है,
जय
ठीक।
हरे कृष्ण महाराज,
लेकिन
जय हरे
चरणामृत
कृष्ण।
को, हाँ तो उनका भी उद्धार हो रहा है पौधों का, लेकिन आप खुद भी ले सकते हैं, भक्तों को भी, भक्तों में भी बांट सकते हैं, तो ऐसे कीजिए।
हाँ जी
ठीक
महाराज,
है,
धन्यवाद। थैंक यू
हरे
वेरी मच
कृष्णा,
महाराज,
हरे
हरे कृष्ण, जय राधे श्याम।
थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु जी। सूरत कविता अग्रवाल दास माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
माता जी पहले नंद कुमार प्रभु जी को ले लीजिए कि उनको ऑफिस में जाओ।
ओके ओके ओके, नंद कुमार प्रभु जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी माता जी।
हरे कृष्ण महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे
आप आए
कृष्णा नंद
और
कुमार प्रभु, नंद कुमार कृष्ण प्रभु,
हरे
कैसे हैं?
कृष्णा।
ठीक
ठीक है महाराज, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपने जो चरणामृत की जो महिमा इतने सरल रूप से समझाया, हम लोग उसको बहुत ही एकदम आसान तरीके से लेते हैं, लेकिन आज हमने समझा कि इतनी इसकी कितनी वैल्यू है। और मैंने ये भी नोटिस किया, ये प्रश्न भी है एक, कि हम जब चरणामृत भगवान का आता है हम पान करते हैं, जैसे प्रद्युम्न प्रभु बोले कि हम पेड़ पौधे में डाल देते हैं, तो एक दो बार मैंने ऐसे नोटिस किया कि वो जो पेड़ में जिसमें हम रेगुलरली डालते हैं वो जल्दी चला जाता है, वो लंबा नहीं रुकता। तो इसका क्या हम ये मतलब समझें कि उसका शुद्धिकरण हो गया और वो अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए, अगले जीवन के लिए तैयार है, ऐसा समझना चाहिए?
अभी जब चरणामृत की ये शक्ति है कि वो मनुष्यों को भी भगवान के धाम में ले जा सके, तो पेड़ पौधों को क्यों नहीं? लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में क्या हो रहा है तो कहना मुश्किल है, परंतु अवश्य लाभ तो होता है उनको, परंतु हो सके तो हमें ही पान कर लेना चाहिए, भक्तों में ही बांट लेना चाहिए जहाँ तक हो सके। ठीक
बहुत
है,
बहुत धन्यवाद महाराज।
हरे कृष्णा।
किरण माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा महाराज जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
थैंक यू किरण माता जी। सूरत कविता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि बोल हरि कृष्ण।
हरे कृष्ण महाराज जी, डेनवर प्रणाम। हमारी थैंक यू, आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे लाइव चैट पे बात कर पा रही हूँ। डेनवर मैं आपकी प्रवचन क्लासेस सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लासेस सुनना। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आज जी चरणामृत के बारे में जानकर, नहीं पता था इतना कुछ भी। तो मेरे दो प्रश्न है महाराज जी। एक तो जैसे कि है ना, चरणामृत के विषय में सुनना है कि हमें बहुत थोड़ी सी कम क्वांटिटी देनी चाहिए, क्यों अधिक मात्रा में देने से मतलब उसका हमारे शरीर से त्याग, जैसे मन मूत्र के रूप में त्याग नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी सुना था। और एक दूसरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि चरणामृत लेने से जो हमारे सारे दुख हैं और जो जैसे जो ग्रहों के जो रहता है हमारे पर से जब हम ग्रसित रहते हैं, अनेकों बार हम देखे जाते हैं जैसे राहु मंगल और शनि से बहुत ग्रसित रहते हैं और बहुत पीड़ादायक होते हैं ये सब। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अगर हम श्रद्धा से अगर चरणामृत लेते हैं तो क्या मतलब रियल में इसका प्रभाव, जैसे रियल में तो जैसे आपने कहा ही है, फिर भी मतलब किस तरह से, क्या इसके साथ कोई मंत्र का जाप भी अलग से करना रहता है ना इसका मतलब ग्रहों का प्रभाव दूर करने के लिए?
जैसे कि हमने शास्त्रों से बतलाया कि पद्म पुराण में बताया गया है और हम प्रभुपाद जी से भी सुन चुके हैं कि भक्ति के अंगों को कर का पालन करके हमारे ग्रहों के प्रभाव से भी हम ऊपर उठ सकते हैं, परंतु श्रद्धा से करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। चरणामृत का पान भी यदि श्रद्धा से हम करें तो अवश्य जो जो भौतिक परिस्थितियों से हम ऊपर आ सकते हैं और नियमित रूप से करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यद्यपि जब हम मंदिर में जाते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा 3 बूंद ले लेने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि 3 बूंद से अधिक नहीं लेना चाहिए। यदि हमें कोई अवसर मिल जाता है तो अवश्य लेना चाहिए। जैसे भगवान के उत्सव जब होते हैं उनमें अभिषेक होता है भगवान का, तो बड़े बड़े ग्लास भर के लोग चरणामृत पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये शरीर के अंदर जा रहा है और फिर आगे मलमूत्र बन के निकलेगा इसलिए हम नहीं खाएंगे। वैसे तो जो भी हम खाते हैं वो तो सब प्रसाद ही है ना, प्रसाद भी तो पावन है, भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए थोड़ा अधिक भी हमने पी लिया यदि उपलब्ध है हमारे लिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है, बल्कि अच्छा ही है।
महाराज जी जैसे मैं घर में रोज लड्डू गोपाल जी मेरे अभिषेक करती हूँ मैं उनका, तो जो भी चरणामृत मैं डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी मुझे लगता है कि सारा मैं पान कर देती हूँ उसका, तो ये सही है महाराज जी?
हाँ, कोई उसमें मुझे तो आपत्ति नहीं लगती है, लेकिन आप सबको बांटिए ताकि सबका लाभ हो जाए, ठीक है? स्वयं भी लीजिए।
हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्ण।
धन्यवाद।
हरे कृष्ण।
थैंक यू माता जी। मूलचंद प्रभु जी आप भी अपने आपको अनम्यूट कर दीजिए।
हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्णा
महाराज जी, आज का लेक्चर मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा। आचरण हमारा बताया और पहले भी आपके लेक्चर सुनते रहते हैं कुछ भी जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, जैसे कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो उनका अभिषेक हम करते हैं, तो जब मैं चैंटिंग करने बैठता हूँ तो मेरा प्रयास होता है कि मैं साउंडली चैंटिंग करूँ, तो गला खुश्क हो जाता है। तो मेरे साथ अच्छी मतलब चैंटिंग, तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरा ध्यान नहीं जा रहा है नाम पर पूरा में, तो मेरे साथ मेरी कॉन्शियस ये होती है कि मैंने अभी तो बल नहीं लिया है, मैं चढ़ना मतलब जो मना दू मेरे अंदर शक्ति आया तो मैं अच्छे से नाम देता हूँ, तो ऐसी कॉन्शियस होती है, तो उसमें कोई अपराध तो नहीं है?
नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब जब करने के संक्षेप में बताइए फिर।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब मैं चैंटिंग में बैठता हूँ तो उस टाइम अगर मैं चैंटिंग करता हूँ साउंडली, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है, मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, मुख से मेरा नाम जो है ना वो जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। मेरी ये कॉन्शियस होती है कि मैंने अभी तक तो वो बल नहीं लिया है, मतलब चरणामृत नहीं लिया, वो लूं ताकि मैं अच्छे से जप कर सकूं, तो उसमें कोई वो अपराध नहीं लगेगा?
नहीं नहीं, अपराध क्यों लगेगा इसमें, लेकिन चाहे चरणामृत उपलब्ध हो या न हो, हमें हरि नाम तो लेना ही लेना है और अच्छे तरह से लेने का प्रयास करना चाहिए। नामामृत तो हमारे लिए मुख्य अमृत है, तो यदि चरणामृत उपलब्ध है अवश्य ले लीजिए नाम जप करने के पहले।
गुरु महाराज
नहीं है तो भी फिर आगे चलिए आप।
मेरे कहने का मतलब ये भाव था कि जब मैं चरणामृत पीता हूँ तो फिर मेरी चैंटिंग अच्छी हो जाती है।
ठीक है, तो करिए फिर, करिए फिर, कोई बात नहीं।
और दूसरा ये
बस, और अन्यों को भी, अन्यों को भी चांस देते हैं। हाँ, एक एक करके करें, ठीक है, सबको चांस मिल जाए पूछने के लिए। ठीक है,
थैंक यू प्रभु जी। श्रद्धा दासी माता जी प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था, ऐसा बोलते हैं कि मतलब जब चरणामृत लेते हैं तो सिर पे नहीं मतलब करना चाहिए करके, मतलब स्त्री को, तो ये क्या सही है प्रभु जी?
क्या चीज सर पे?
उसको चरणामृत को सर पे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं।
नहीं, पान करने के बाद सिर पे छिड़क सकते हैं जो भी हाथ है, क्योंकि बाल होते हैं, इसलिए वैसे पुरुषों को अपनी शिखा के ऊपर या सर के ऊपर कर लेना चाहिए, पहुंच लेना चाहिए। और वैसे भी जब भगवान का जल जो आरती का अर्पण किया हुआ जब वो छिड़का जाता है मंदिर में, तो हम सब लोग सर नीचे करते हैं ताकि शिरोधारी हम उसे स्वीकार करते हैं, शिरसा धारयाम यहम जैसे श्लोक में था, तो अवश्य सर के ऊपर भी धारण कर सकते हैं।
ऐसा स्त्रियों को करते हैं, धारा करते हैं ताकि स्त्री का बाल जो होता है वो मतलब उसमें कुछ और नहीं है ना, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है सिर पे धारण करते?
नहीं, क्यों समस्या होनी चाहिए? अवश्य हम केवल भगवान का चरणामृत सर पे धारण करने स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, तो अवश्य आप करिए।
ओके प्रभु जी, धन्यवाद।
माता जी थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। गैलेक्सी M02S प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई कांट सी द नेम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार।
हरे कृष्ण।
मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु, क्या आप बोल रहे हैं चला अमृत पीने से ही कौवा तर गया, तो अगर हम चरणामृत पी कर इतना शुद्ध हो जाएंगे कि मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर इतना हम लोग इतना हरे कृष्णा करते हैं, इतना सेवा करते हैं, सब करने से क्या फायदा? वो चरणामृत ही पी लेना चाहिए।
नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि इसे हमें अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, और जो उस कौवे के साथ हुआ जरूरी नहीं है कि हमारे साथ भी वैसे ही होगा। हाँ, तो हमने समझाया कि ये विशेष विशेष ऐसी घटनाएं हैं जो शास्त्रों में पाई जाती हैं, सत्य घटनाएं हैं, परंतु विशेष घटनाएं होती हैं हम सबको श्रद्धा दिलाने के लिए कि इन कार्यों में कितनी शक्ति है। जब ये कहा जाता है हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है ताकि हम ऐसे कार्य करें तो हमारे लिए भगवान के धाम के द्वार खुल जाएंगे, फिर ऐसे आजीवन हमें इस तरह के भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए, तब जाकर जीवन के अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है, और दो प्रश्न लेंगे। ठीक है, और दो प्रश्न लेंगे।
थैंक यू सो मच गुरु महाराज। निकुंज राधा माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण।
हाँ महाराज जी, आपने जैसे कहा था कि उच्छिष्ट वैष्णव के उच्छिष्ट भी हमें लेने चाहिए, तो मैंने जैसे महाराज जी हैं उनके उच्छिष्ट हो, वैष्णव के उच्छिष्ट हो, तो क्या उनसे आदेश लेना चाहिए पहले कि हम ले सकते हैं बिना पूछे उनसे?
ये तो
मुझे एक बार डांट पड़ी थी इसलिए।
आप ले सकते हैं, परंतु आप वहां आपके वरिष्ठ भक्त हैं उनसे बात करके देख लीजिए, ठीक है। ले सकते हैं आप, ले सकते हैं, ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच।
अंतिम प्रश्न कोई है आप पूछ लीजिए।
अलंकृत ब्रजेश्वरी माता जी।
हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम।
हरे
तो फिर निर्जला एकादशी करते हैं चरणामृत। हरे कृष्ण,
वैसे साधारणतः चरणामृत लेना ये उपवास को तोड़ने के बराबर होता है और नहीं भी तोड़ने के बराबर होता है। ये निर्भर करता है कि किस तरह का उपवास हम कर रहे हैं। यदि हमने निर्जल उपवास करना है तो चरणामृत भी नहीं लेना है। यदि निर्जल उपवास नहीं कर रहे हैं तो ले सकते हैं, और जैसे और भी कोई चीज़ें हैं जो हम लेते हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन यदि हमने निर्जल उपवास किया है तो उस उपवास के व्रत का पारण करने करते समय हम चरणामृत का पान कर सकते हैं। जो उस उपवास को तोड़ रहे हैं, व्रत को तोड़ रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, तो उस समय हम चरणामृत का पान कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू महाराज जी। दो क्वेश्चन और है, ले लेना। टू मोर क्वेश्चन, टू मोर हैंड्स आर रेज, आई कैन टेक।
ठीक है, दो ही।
नंद कुमार दास जी,
हाँ, दो प्रश्न।
हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
बस महाराज जी, मेरे क्वेश्चन ये था कि जब जन्माष्टमी उत्सव होते हैं मंदिर में, जो महा अभिषेक जो होता है भगवान का, तो वही महा चरणामृत गिना जाएगा? वो जो बड़े पैमाने में मिलता है तो वो महा चरणामृत हो गया जब?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
महाप्रभु का अभिषेक होता है, कृष्ण भगवान का अभिषेक होता है, और जो बड़े पैमाने में होते इसमें काफी जूस होते हैं, काफी
हाँ, अवश्य अवश्य। जैसे मैंने पहले, जैसे मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हम लोग साधारणतः तीन बूंद लेते हैं, परंतु ऐसे बड़े उत्सव जैसे जन्माष्टमी हो इत्यादि, इसमें हमें ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, ग्लास भर के हम लोग हमें मिलता है, तो पीना चाहिए अवश्य। जहाँ उपलब्ध है वहाँ पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं।
जानना था कि पंचामृत और चरणामृत में क्या अंतर होता है, और दूसरा एक चीज प्रभु जी बोलते थे, मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि जैसे हम कभी भी इस जन्म में या बहुत सारे जन्मों के बाद अगर गोलोक धाम या बैकुंठ गए या जहाँ भी गए, तो वहाँ प्रभुपाद जी को हम यहाँ से प्रणाम करते हैं, तो प्रभुपाद जी की वजह से अगर वहाँ जा रहे हैं उनके बताए रास्तों के, तो प्रभुपाद जी वहाँ हैं तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी बदल गया होगा, प्रभुपाद जी का शरीर भी बदल गया होगा। तो बहुत दिनों से मेरे मन में विचार आते थे।
पहली बात तो ये है कि पंचामृत का अर्थ है जो पांच पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, घी, दही, शहद और शक्कर का पानी। तो ये पांच चीज़ें अभिषेक में प्रयोग की जाती हैं, तो जब वो अभिषेक में प्रयोग होती हैं तब वो चरणामृत बन जाते हैं। ठीक है, तो पंचामृत का ये चरणामृत है। और दूसरी बात, प्रभुपाद जी अब गोलोक वृंदावन में अपने स्वरूप में स्थित हैं, अवश्य जैसे यहाँ हम उनको पहचानते हैं उस रूप में तो नहीं रहेंगे, तो उस रूप में कैसे रहेंगे, वो तो अपने स्वरूप में रहेंगे। तो यदि भगवान कृष्ण सोचते हैं कि हमें उनको पहचानना चाहिए, यदि प्रभुपाद जी कृपा करेंगे तो अवश्य हम जब जाएंगे, जितने भी जन्म हमें लगे, इस जन्म में हो और आगे आने वाले जन्म में हो, जब भी हम जाएंगे, यदि प्रभुपाद जी कृपा करें हमारे ऊपर, तो उनको वहाँ पहचान पाएंगे, परंतु वो प्रभुपाद जी के रूप में नहीं रहेंगे, अपने स्वरूप में वहाँ पर रहेंगे, सेवा कर रहे होंगे राधा कृष्ण की। ठीक है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है,
प्रभु जी।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए इट्स वेरी इंस्पायरिंग ये क्लास की चरणामृत के बारे में समझना। जब भी आप कोई भी क्लास देते हैं उसमें जिस हिसाब से आप टॉपिक कवर करते हैं तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन जो हों या नहीं हों सब क्लियर हो जाता है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। बस आप अगर आते रहें तो हमारे लिए ये एसोसिएशन बना रहेगा। सो दैट्स आवर लास्ट रिक्वेस्ट फॉर दिस क्लास, इफ यू कैन प्लीज कीप कमिंग।
यस, अवश्य आऊंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद नंद कुमार कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, और आप सबको भी हरे कृष्णा।
कृष्ण महाराज धन्यवाद
प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।